मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 5 जून 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने जा रहे हैं और यह इशू ऐसा है जो भले ही हम उस पर अभी बात कर रहे हैं, लेकिन ये मानकर चलें कि ये एवरग्रीन टाइप का सब्जेक्ट है जो लगातार बहस में रहेगा, क्योंकि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के न केवल मूल में ही है बल्कि इसके अर्थशास्त्र को लेकर जो बहस चलती रहती है बीच बीच में, उसके भी मूल में है। और मित्रों, यह विषय है कृषि पर आय कर, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर इनकम टैक्स लगाए जाने की बात। इस पर हम चर्चा करेंगे और मूल रूप से तीन बिंदु हम इसमें देखेंगे। फ्रेंड्स, पहला तो यह कि लगाए जाने के पक्ष में क्या बात की जाती है कि एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, इनकम टैक्स की बात मैं कर रहा हूं। फिर एक दूसरा वर्ग है जो इसका जबरदस्त रूप से विरोध भी करता है, तो उसके पास क्या दलीलें हैं कि नहीं लगाई जानी चाहिए, और फिर इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, मतलब क्या उपाय हो सकते हैं, विकल्प क्या हो सकते हैं, या सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए। तो इन तीन बिंदुओं पर हम लोग मुख्य रूप से बातें करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान होगा आपको कि अभी अभी जब नीति आयोग अपनी कार्य योजना प्रस्तुत कर रहा था, 3 साल का एक्शन प्लान अभी नीति आयोग ने दिया है ना, उस दौरान जो आयोग के एक सदस्य थे विवेक देव राय, अभी भी सदस्य हैं वो, उन्होंने कृषि आय पर कर लगाने की बात कही और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मतलब ये केवल सुझाव दिया है, केवल सरकार से कहा है कि नहीं, जो हमारे जो बड़े किसान हैं जिनकी आय अधिक हो रही है, उन पर इनकम टैक्स लगाए जाने के बारे में सोचा जाना चाहिए। बल्कि उनका यह भी कहना था कि देखिए, हमारे यहां जो इनकम टैक्स का जो अभी दायरा है, जो बेस है, वो बहुत ही कम है। वैसे तो सोचिए कि 130 करोड़ की आबादी में कुल 2.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देने वाले हैं, और अगर वर्किंग फोर्स को ले लिया जाए तो जो वर्किंग फोर्स है, हमारे यहां की जो कार्यशील जनसंख्या है, उसका हार्डली 6% एग्जैक्ट 5.9% है ही केवल इनकम टैक्स के दायरे में है। सोच करके देखिए कि कितने कम लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, और ये तो केवल वे हैं जो टैक्स का फॉर्म भर रहे हैं, इनकम टैक्स का देने वालों की संख्या तो और भी कम है। तो विवेक देव राय जी का यह भी कहना था कि अगर हमको टैक्स का अपना बेस बढ़ाना है तो उसका एक फील्ड अभी अनटच्ड है और वो एग्रीकल्चर का फील्ड है। हाँ, इसको कैसे किया जाए, कैसे बड़े किसान और छोटे किसान की पहचान की जाए, इसके बारे में जरूर एक सिस्टम बनाया जा सकता है और इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। तो मित्रों, विवेक देव राय जी ने तो ये बात कह दी और जैसे ही उन्होंने ये बात रखी, देश भर में बहस शुरू हो गई, क्योंकि ये जो मामला है ये थोड़ा सा पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव मामला है। पॉलिटिकली सेंसिटिव कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि आज भी हमारी टोटल पॉपुलेशन 57-58% एग्रीकल्चर पर निर्भर कर रही है। ये बात अलग है कि टोटल GDP में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 14-15% है, सही आंकड़ा तो 14% के आसपास है। सोचिए कि 57% पॉपुलेशन और उनका उत्पादन कुल मिलाकर 14%, तो ये आंकड़ा अपने आप में बता देता है कि कृषि क्षेत्र की हालत क्या होगी। तो पॉलिटिकली सेंसिटिव इस मायने में है कि अगर, मतलब ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े बहुत साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि कृषि क्षेत्र की हालत बहुत अच्छी नहीं है और किसान गरीब हैं। और एक ऐसे माहौल में अभी सोचकर देखिए कि जगह जगह से खबरें आती हैं कि वहां के किसान ने आत्महत्या कर ली, वहां के किसानों ने आत्महत्या कर ली, लगातार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर के बहस हो रही है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में किसानों की आमदनी कम हो रही है उस पर लेकर बहस हो रही है, अकाल पड़ रहे हैं उसको लेकर के सरकार चिंतित है, समाज भी चिंतित है। तो ऐसे माहौल में अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर, किसानों पर कह लीजिए, चलिए हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शब्द इस्तेमाल नहीं करते, किसानों पर कोई इनकम टैक्स लगाने की बात कह दे, तो मामला बड़ा संगीन हो जाता है, राजनीतिक दृष्टि से बड़ा संवेदनशील हो जाता है। इसीलिए आप देखिए कि तुरंत जैसे ही विवेक देव राय जी ने यह बात कही, दो लोग एकदम सामने आए और उन्होंने तुरंत नकार दिया। सबसे पहले तो हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी आए, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो किसानों के ऊपर कोई इनकम टैक्स लगाने के बारे में सोच रही है। इसके बाद फिर नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी वो आए, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये जो विवेक देव राय जी ने जो बात कही है ये उनकी बिल्कुल निहायत निजी राय है, ये नीति आयोग की का सजेशन नहीं है, और बात खत्म हो गई। राइट, तो बात संभल गई, लेकिन एक बहस जरूर शुरू हो गई। और डेमोक्रेसी में बहस तो देखिए चलनी भी चाहिए, ठीक है हम लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो बात अलग है, लेकिन बीच बीच में इस पर विचार तो किया ही जाना चाहिए। जो बदलाव आए हैं वो इसी वजह से ही आ पाए हैं कि बीच बीच में वो मुद्दे उठे, उन मुद्दों पर बातचीत की गई और फिर एक निष्कर्ष निकाला गया। जैसे अभी आप तीन तलाक के मामले को ही लेकर के देखिए, है ना, लगातार बहस चली, बहस करने के बाद चलते चलते अब हम किस स्थिति पर पहुंचे हैं कि अब लग रहा है कि जैसे कोई निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष चाहे जो भी हो लेकिन कम से कम एक व्यवस्था तो हो ही जाएगी। तो मित्रों, ये किसान पर टैक्स लगाए जाने का मामला भी काफी कुछ इसी तरह का एक राजनीतिक दृष्टि से बड़ा संवेदनशील मामला है। ठीक है, चलिए यहां तक इसकी पृष्ठभूमि थी, और इसीलिए सच पूछे तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हो गया है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मित्रों, आइए अब देखते हैं कि लोग इसके बारे में क्या क्या सोचते हैं, कुछ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर निगाह डालते हैं। इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है कि नहीं किसानों पर भी टैक्स लगाया जाना चाहिए, तो देखिए सैद्धांतिक पक्ष में तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि न्याय का एक सिद्धांत होता है। न्याय का सिद्धांत क्या है कि जो भी इनकम कर रहा है, जिसे भी इनकम हो रही है, वो इनकम टैक्स दे, और उसका बकायदे स्लैब बना हुआ है। 2.5 लाख रुपए से अधिक की इनकम वाले ही इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, यानी कि यदि कोई किसान 2.5 लाख रुपए से सालाना कम कमा रहा है तो सीधी सी बात है कोई इनकम टैक्स के दायरे में है ही नहीं, और अगर वो 2.5 लाख रुपए से अधिक कमा रहा है तो उसे इनकम टैक्स इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि और दूसरे क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हैं, कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं, आखिर में 2.5 लाख रुपए अधिक कमाने पर वो इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनका भी गुजारा हो रहा है, किसान का भी गुजारा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसानों को क्यों छूट दी जानी चाहिए? तो न्याय का सिद्धांत तो यही कहता है कि उनसे भी टैक्स लिया जाए, और बिल्कुल कोई गलत नहीं है। देखिए एक बात और भी है कि किसान तो गांव में रहते हैं, तो गांव में रहने की वजह से सच पूछे तो लिविंग स्टैंडर्ड उनका उतने ही पैसे में बेहतर हो सकता है क्योंकि वहां चीजें सस्ती होती हैं। थोड़े से कस्बे में आ जाइए, उससे फिर बड़े शहर में आ जाइए तो चीजें महंगी होने लगती हैं, तो उनको लिविंग स्टैंडर्ड के लिए 2.5 लाख रुपए शायद कम पड़ जाए, लेकिन किसान को तो कम नहीं पड़ेंगे। तो न्याय के सिद्धांत में तो ये बात आती है। दूसरा एक पॉइंट और भी है न्याय के सिद्धांत के तहत ही कि जैसे एक किसान है तो किसान भी उन सभी वस्तुओं का उपयोग कर रहा है जो सरकार, जो टैक्स मिलता है उससे समाज को प्रोवाइड करती है, जैसे स्कूल, अस्पताल, रोड, तो ये सारी सुविधाएं सरकार टैक्स के पैसे से ही उपलब्ध कराती है। तो जो किसान है वह भी इसका फायदा ले रहा है, और अगर वह इसका फायदा ले रहा है तो स्वाभाविक है कि वह भी इसके बदले में कुछ दे, और वो बदला क्या हो सकता है? इनकम टैक्स के फॉर्म में हो सकता है। तो ये दो तो मित्रों न्याय के सिद्धांत पर आधारित तर्क हैं, लेकिन कुछ और व्यावहारिक तर्क भी हैं। देखिए व्यावहारिक तर्क दो सबसे बड़े हैं, और सच पूछिए तो यही वे तर्क हैं जिनके आधार पर कहा जाता है कि नहीं टैक्स लगाया जाना चाहिए। कुछ लोग बहुत बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। पहला तो ये है फ्रेंड्स कि कृषि आय को अभी जो इनकम टैक्स से परे रखा गया है, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी भी क्यों ना हो, चाहे 5 करोड़ क्यों ना हो, आपको टैक्स नहीं देना है। ये इसलिए किया गया कि लोग खेती में आगे आए, खेत जो एग्रीकल्चर का जो फील्ड है उसे प्रोत्साहन मिले, लेकिन हो क्या रहा है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। गलत इस्तेमाल इस रूप में हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है या एक सामान्य स्याही व्यक्ति है, उस इनकम टैक्स वो दे रहा है, फिर वो क्या करेगा, 10, 20, 50, 100 एकड़ जमीन खरीद लेगा। अब वो जमीन पर कुछ कर नहीं रहा है, उसकी कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, लेकिन वो दिखा देता है साल भर में कि इस 50 एकड़ जमीन से या 100 एकड़ जमीन से मुझे 50 लाख रुपए का फायदा हुआ, 20 लाख रुपए का फायदा हुआ, वो कुछ भी दिखा देगा, ये बोया गया है, थोड़ा सा बो भी देगा, उसमें उसको नुकसान भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए कि अगर वो दिखा देता है कि 50 लाख रुपए का मुझे इसमें फायदा हुआ, अब वो 50 लाख रुपए के इनकम टैक्स में उसको छूट मिल गई। अब 50 लाख रुपए पर 30% के हिसाब से सोचिए कि 15 लाख रुपए उसके इनकम टैक्स बच गए, 15 लाख रुपए बच गए, भले अब उसमें कुछ भी क्यों ना बोए। और ये जो उसने टैक्स बचाया है अपनी दूसरे सेक्टर की जो आमदनी है उसको एडजस्ट कर लेगा, तो इसको बैठे ठाले 15 लाख रुपए का फायदा हो गया। इसको कहा जाता है टैक्स की चोरी। तो इस तरीके से कृषि क्षेत्र में दी गई छूट का फायदा उठा करके कुछ लोग टैक्स की चोरी करते हैं, तो इससे देश को नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कोई प्रोत्साहन मिल नहीं रहा है जो सरकार का उद्देश्य था। तो ये बहुत ही हाईली, मतलब ये सबसे वजनी पॉइंट है, खासकर जो इसके पक्ष में अपनी बात रखते हैं। इसके बाद जो एक और पॉइंट आता है दोस्तों, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर के है। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक टिश्यू कल्चर को लेकर के, टिश्यू पौधों को लेकर के कंपनियां काम कर रही हैं, अब उसमें दुनिया भर का पैसा वो कमा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां, अब आप देखिए कि पता लगा कि सैकड़ों एकड़ जमीन पर उन्होंने केले लगा रखे हैं, रिलायंस फ्रेश वगैरह अब ये करने लगे हैं, है ना। वो अपनी जमीन ले लेते हैं, अपनी जमीन पर फिर वो अपनी चीजें बोते हैं, केले बो रहे हैं, आलू बो रहे हैं, और ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। अब ये कर रहे हैं इंडस्ट्री के हिसाब से, लेकिन चूंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो ये फ्री है, इनको कोई इस पर टैक्स नहीं देना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट है कि भाई ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक बेसिकली इंडस्ट्री के उद्देश्य से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कर रही हैं और खूब कमा भी रही हैं, अगर प्योरली एग्रीकल्चर ही इनकम उनकी देखी जाए तो बहुत बड़ी आय होती है, लेकिन उन्हें भी छूट मिली हुई है। तो अब सवाल है कि इनके साथ क्या किया जाए, तो ये भी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये तो दोस्तों एक पक्ष थे, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो इस बात के लिए सच पूछे कि वो उकसाते हैं कि यस यस इनको पर भी टैक्स लगाया जाना चाहिए, इनको क्यों छूट दी जानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स अब हम आते हैं दूसरा एक इसका व्यावहारिक क्षेत्र, कि ठीक है चलिए तार्किक रूप से तो ये बहुत सही लगता है, लेकिन अगर इसको वास्तव में इम्प्लीमेंट किया जाए तो फिर क्या संकट आ सकते हैं। देखिए अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि भारतीय किसान मूलतः गरीब है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय किसान मूलतः गरीब है, बेहद गरीब है। किसान जो आत्महत्याएं कर रहे हैं वो इसका प्रमाण है, और किसान लगातार प्रतिदिन जो खेती के पेशे को छोड़ रहे हैं वो भी इसका प्रमाण है, क्योंकि खेती उनके लिए फायदे का काम नहीं रह गया है, तो ये प्रमाण है कि खेती में आमदनी नहीं हो रही है। चलिए ये तो छोटे किसानों की बात है। मित्रों अभी जो नए आंकड़े आए हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की गई है, और वो है कि सोच करके देखिए कि जिस किसान के पास 10 हेक्टेयर जमीन है, 10 हेक्टेयर जमीन का मतलब हो गया 25 एकड़ जमीन है, सोचिए उसकी जो वार्षिक आय होती है, जो एनुअल इनकम होती है, वो एवरेज 2,35,000 रुपए की होती है, मात्र 2,35,000 रुपए की। अब आप सोचिए कि 2,35,000 रुपए 10 एकड़ जमीन वाला कमा रहा है तो टैक्स के दायरे से तो बाहर है, क्योंकि 2,50,000 रुपए से अधिक के इनकम पर ही आप टैक्स देंगे, तो ये टैक्स से खत्म ही हो गया। दूसरा इसी सर्वे संगठन का जो आंकड़ा है वो ये है कि हमारे देश के लगभग जो 86% जो खेत हैं वो बहुत ही छोटे आकार के हैं, 2 एकड़ से भी छोटे हैं, और ये बहुत छोटे छोटे किसानों के पास हैं। यानी कि किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होगा जो ऑलरेडी टैक्स के दायरे से बाहर है, ऑलरेडी बाहर है, तो ऐसे में आप टैक्स लगाकर करेंगे भी क्या, कोई आपको फायदा नहीं होगा। सच पूछे तो इसको लेकर के कैलकुलेट भी किया गया, कैलकुलेशन किया गया कि अगर लगा दिया जाता है तो चलिए अंदाजन कितना टैक्स आएगा, तो कैलकुलेशन में लगभग 25,000 करोड़ रुपए आया। जैसे बड़ी कंपनीज और बड़े लोगों को टैक्स में अगर शामिल कर लिया जाए कि आपको टैक्स देना है, तो करीब 25,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ। अब दोस्तों ये जो 25,000 करोड़ रुपए का हुआ, एक तो इस टैक्स के कलेक्शन पर कुछ खर्चा हो जाएगा, चलिए वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। दूसरा यह है कि यह भी कहना मानना है कि अगर इन पर टैक्स लगा दिया जाए तो होगा यह कि लोग डिस्करेज होंगे, सोचेंगे कि अरे इसमें टैक्स, वो टैक्स के लिए ही, टैक्स का आकर्षण ही उन्हें उससे जोड़े हुए था। जैसे कुछ उद्योग हैं, कुछ उद्योगपति हैं, वो टैक्स की बचत की वजह से कुछ कर भी लेते हैं, चलिए। तो अब होगा क्या कि वो फिर टैक्स की चूंकि छूट उनकी खत्म हो गई है तो वो निरुत्साहित होंगे और अपने को विड्रा करने लगेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मिर्ची की खेती कर रहा है, कोई और दूसरे जो कैश क्रॉप होते हैं, कैश क्रॉप के कामों में लगे हुए हैं, तो कैश क्रॉप बो रहे हैं और अब उनको लग रहा है कि चूंकि टैक्स का फायदा नहीं हो रहा है तो अब कोई छोड़िए इसको। अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं तो वहां जो मजदूरी में जो काम कर रहे हैं लोग, जो गांव के मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो खाली समय में इस तरह का काम कर रहे हैं, पता लगा कि वहां से वो बर्खास्त हो जाएंगे, वहां से डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो बेरोजगारी की एक स्थिति आ सकती है। यानी कि जो वर्क फोर्स अभी इन चीजों में इन्वॉल्व है, उस वर्क फोर्स को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। वैसे ही देश बेरोजगारी की इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है तो मजदूरी कम हो जाएगी, तो उससे भी लगता है कि नहीं, अगर टैक्स लगाया जाता है तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं होगी। और वैसे भी फ्रेंड्स, एक पॉइंट ये भी है कि जो टैक्स, अगर इनकम टैक्स लगाना है या कुछ ऐसा भी करना है तो ये राज्य सूची का विषय है, केंद्र सरकार इसके बारे में सीधे सीधे निर्णय भी नहीं ले सकती। तो ये तीन चार, दो तीन पॉइंट हैं कि गरीब लोग हैं, मजदूरी वहां से खत्म हो सकती है, पॉलिटिकली काफी सेंसिटिव इश्यू है, इसको भी आप इसी के तहत ले सकते हैं। 10 एकड़ जमीन, जिनके पास 25 एकड़ जमीन है वो भी 2.5 लाख के दायरे में नहीं आते हैं, तो ये सारी चीजें शो करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यावहारिक नहीं होगा अगर किसानों पर टैक्स लगाया जाता है। तो सवाल है फ्रेंड्स कि अब किया क्या जाए। हम थर्ड एंड लास्ट पॉइंट पर आते हैं, ये आपके सोचने के लिए भी है दरअसल, ये तो अब आपको अपनी तरफ से भी निष्कर्ष निकालना है। मैं आपको दो तीन छोटे छोटे पॉइंट देता हूं। पहला तो ये है फ्रेंड्स कि केवल किसानों को छूट दे दिया, जो प्योर फार्मर का काम कर रहे हैं उनको छूट दे दी जाए कि ठीक है आपको टैक्स की छूट है, लेकिन जो दूसरे कामों के साथ खेती कर रहे हैं उन्हें ये छूट ना दी जाए। होता क्या है कि जैसे किसी ने इंडस्ट्री खोल रखी है, या कोई नौकरी भी कर रहा है, या कोई व्यापार कर रहा है, उसने भी 50-100 एकड़ जमीन ले रखी है और वो खेती भी कर रहा है, तो वो खेती की इनकम को अपने टोटल इनकम में जोड़ करके टैक्स की छूट ले लेता है, जो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने इनकम के सोर्स दूसरों के साथ साथ खेती के दिखाता है, उसको उसके प्योर इनकम में मान लिया जाए, उस पर टैक्स की छूट न दी जाए, उससे टैक्स वसूला जाए, पहली बात। दूसरी बात जो कही जाती है, जो डॉक्टर झुनझुनवाला ने जो सजेस्ट की है, डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी ने, वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जो नगदी जो खेती होती है ना, जैसे कोई केला पैदा कर रहा है, कोई मेंथा पैदा कर रहा है, इस तरह की जो जिसे हम कैश क्रॉप कहते हैं, गन्ना पैदा किया जा रहा है, तो ये कैश क्रॉप जो पैदा किए जाते हैं इन पर टैक्स लगाया जाए। उन्होंने कहा जीएसटी लगाया जाए, इनकम टैक्स मत लगाइए आप, जीएसटी लगाइए, और इससे जो पैसा मिलेगा, टैक्स से जो पैसा मिलेगा, जो करीब 25,000 करोड़ रुपए का अनुमान है, तो उन्होंने फिर कैलकुलेट करके बताया कि ये पैसा फिर जो गरीब किसान है उन्हें सब्सिडी के बतौर दे दिया जाए, इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। और उन्होंने कहा भी है कि कुछ ऐसे विकसित देश है, चलो डेवलप्ड कंट्री, जो अपने किसानों के लिए यही करते हैं, जैसे आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप का मान लीजिए, या सब्सिडी मान लीजिए, गरीब किसान को दी जाने वाली सब्सिडी मान लीजिए, तो उन्होंने कहा कि 10 करोड़ लगभग परिवार ऐसे हैं जो वाकई में बहुत गरीब हैं, किसान हैं लेकिन बहुत गरीब हैं, तो हर परिवार को 2,500 रुपए आप दे सकते हैं, अगर आपके पास 25,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो जाता है इनकम टैक्स के जरिए, तो इससे थोड़ा सा सामाजिक कल्याण की जो स्थिति है वो इंश्योर हो सकेगी। ये मित्रों उन्होंने सुझाया है। तो तीन पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, अब आपको अपनी तरफ से और पॉइंट्स सोचने हैं, और जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं उन्हें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और भी इस पर आर्टिकल्स आते रहेंगे, आपको चाहिए कि आप उन्हें देखते रहें, पढ़ते रहें, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, कुछ आप इसमें जोड़ लें, और इस तरीके से एक बड़ा मुकम्मल नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ समय के लिए अभी हो गया है, तो इसको आप इग्नोर प्लीज मत कीजिएगा। तो मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।